ओम शांति। हम सभी के बीच दिव्यता से भरपूर, दिव्य गुणों से संपन्न ऐसी महान हस्ती हमारे दिव्य प्रभा दीदी जी है। आप मुंबई बोरीवली सब जोन के इंचार्ज भी है, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट विंग की आप अध्यक्षा भी है और आपके दिशा निर्देश से बहुत सारी सेवाएं मुंबई में भी होती है और ट्रांसपोर्ट विंग की भी पूरे भारत देश में आप सेवाएं देते हैं। दीदी के दिल के उद्गार ये कहते हैं, न चांद की चाहत थी, न सितारों की फरमाइश, न चांद की चाहत थी न सितारों की फरमाइश, संगम युग पर बाबा मिले यही थी मेरे दिल की ख्वाहिश। भगवान ने उन्हें अपना बनाया, इससे और क्या हो सकता है। सफलता एक वाहन है, ट्रांसपोर्ट विंग के दीदी अध्यक्षा है। सफलता एक वाहन है जो कर्मों के पहियों पर चलता है, आत्मविश्वास के ईंधन बिना, पेट्रोल बिना जीवन की यात्रा करना असंभव है। तो आज हम सभी को दीदी जी वृत्ति से वायुमंडल इस विषय पर गहराई से ज्ञान रत्नों से झोली भरेंगे। एक हाथ की ताली से दीदी जी का अभिवादन है, स्वागत है। ओम शांति। धन्यवाद।
ओम शांति। डायमंड हॉल का वायुमंडल, वातावरण कितना सुंदर बना है, लेकिन इस वातावरण को, वायुमंडल को बनाने वाले कौन? वायुमंडल कौन बनाता है? हम बच्चे ही बनाते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे घर का वायुमंडल एक स्वर्ग जैसा हो, शांत हो, यूनिटी हो, आपस में प्यार हो। ऐसा घर का वातावरण भी अच्छा लगता है ना? हम यही चाहते हैं, लेकिन वातावरण बनेगा कैसे? बाबा ने कहा कि वृत्ति वायुमंडल वातावरण को बनाती है। अब वृत्ति किसको कहते हैं? जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी स्थान को देखते हैं तो हमारे मन के अंदर उस व्यक्ति के प्रति कोई भाव जागते हैं। भाव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक प्यार का भाव जागृत हो, दूसरा हो सकता है नफरत हो, ईर्ष्या का भाव जागृत हो। लेकिन हर एक, चाहे हम जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन व्यक्ति को देखने से मन में कोई न कोई भावना जागृत होती है और वह है हमारी वृत्ति, जिसको भाव कहे, भावना कहे। अब वो वृत्ति बनती कैसे है, उसके भिन्न भिन्न कारण है वृत्ति बनने के भी। जैसे एक है कि हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारी वृत्ति बने। जब बोरीवली से अफ्रीका में रिट्रीट के लिए ग्रुप गया था तो जाने वाले भाई बहनों ने अफ्रीका के बारे में स्टडी की पढ़ाई पढ़ा उन्होंने, तो उनके अंदर मन में ये था कि वहां पर जो ब्लैक लोग होते हैं तो वो पैसा छीन लेते हैं, खून कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। और जब हम वहां पर गए तो वेदांति बहन ने माताओं को होता है ना शॉपिंग का चौंक, तो माताएं कहने लगी कि हम जरा यहाँ का बाजार देख के आए। तो वेदांति बहन ने कहा बड़े बड़े पर्स वगैरह लेकर के नहीं जाना वहां पर, छोटा सा पर्स रखना नहीं तो कोई छीन लेगा। पढ़ा सुना तो वृत्ति कैसी बन गई। अब बाजार में गए लेकिन वहां जिन भी ब्लैक लोगों को देखे तो मन में ये डर और भय बना रहता था कि हमें सावधान रहना है, है ना, सावधानी रखते थे और उसी वृत्ति से उसी को देखते थे। एक बार मैं जर्नी कर रही थी, कहीं भट्टी कराने जा रही थी, तो वहां कोई एक स्टेशन है कि जहां बहुत चोरियां होती है, तो अटेंडेंट टीसी आदि ने पहले से ही हर बोगी के अंदर अनाउंस किया कि आकर के बताते थे आप अपने इस स्टेशन पर अपने सामान का ध्यान रखना, आप रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ बहुत ही चोरी आदि होती है। तो ये सुना तो वो स्टेशन आने के बाद जो भी व्यक्ति अंदर पैसेंजर एंटर होता था, लेकिन हमारी वृत्ति कैसी रहती थी कि भैया चोर ना हो, ना भी हो वो अपनी सीट के लिए जा रहा है, लेकिन वृत्ति सुनने से कैसी बन गई कि ये कोई हमारे सामान की चोरी ना कर ले। तो सुनने से वृत्ति बनती है। कई बार आप किसी स्थान पर जाने वाले हो, उस व्यक्ति के पास रहने वाले हो और उस व्यक्ति के बारे में आपको पहले से सुनाया जाए कि उनका नेचर है ना वो गुस्से वाला है ना, वो बहुत ही कंजूस है, वो बहुत स्ट्रीक है ना, भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की, बहुत एक्यूरेट परफेक्ट उनको काम चाहिए, उनकी नेचर ऐसी है। कुछ बातें आपको सुना दी जाए, बता दी जाए तो आपकी वृत्ति उनके लिए क्या होगी, वैसी बन जाएगी ना। उनके पास जाएंगे, उनको देखेंगे तो वही प्रिंट और वही छाप आपके दिमाग में रहेगी। तो पढ़ने से भी वृत्ति बनती है, सुनने से भी वृत्ति बनती है, दूसरा व्यवहार से भी वृत्ति बनती है। कई बार किसी व्यक्ति ने किसके लिए कह दिया हो कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, अब सावधान रहना, संभालना उससे, लेकिन आप उनके संपर्क में आते हो, समीप आते हो और आपको उससे अच्छा एहसास होता है। उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, जो कहा था वो उनके व्यवहार में देखने को नहीं मिलता है, तो आप कहेंगे कि भले उन्होंने कहा हुआ हो लेकिन मैं तो खुद उनके साथ रखी हूं, वो वैसे नहीं है। तो आपकी वृत्ति बदली ना, चेंज हुई। क्यों? व्यवहार से भी वृत्ति बदलती है। इसीलिए ही तो बाबा भी कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों में नहीं जाओ, कोई किसके लिए क्या, कोई किसके लिए क्या बोलेगा। और बाबा ने हमें ये ज्ञान भी दिया है, हर एक आत्मा का आत्मा के साथ अलग अलग हिसाब किताब है। जो एक के साथ है व्यक्ति दूसरे के साथ भी वैसा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर हम अपनी वृत्ति को नेगेटिव बना न ले। सावधानी जरूर रखे लेकिन वृत्ति में नेगेटिविटी ला करके नहीं रखे। मुझे याद है कि जब हमने गोरेगांव में सेंटर्स लिया तो फर्स्ट फ्लोर पर गेस्ट हाउस था और जैसे ही सीढ़ी से चढ़ो एंटर में और रिसेप्शन में एक भाई जो बैठता था तो उसके बारे में बहुत गलत मान्यताएं थी और अलग प्रकार का व्यक्ति था। और हमारा सेकंड फ्लोर पर सेंटर है तो हमको फर्स्ट फ्लोर क्रॉस करके ही ऊपर जाना होता था। अभी सुन रखा था लेकिन जब हम वहां पर गए एक बारी सेंटर पर इनवाइट किया, ज्ञान की बातें की, उनको प्रसाद हमेशा हर गुरुवार को भेजते थे तो हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, हमें कोई तकलीफ नहीं देता था। और ये कहता था कि अच्छा आप बहने ही यहाँ रहती हो, कभी भी कोई भी जरूरत हो तो आप हमें बताइए, हम आपकी मदद के लिए तैयार है। तो ये क्या हुआ, व्यवहार से वृत्ति बदलती है, चेंज होती है। ऐसे कई एक्सपीरियंस है हमें, इसलिए हमारा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। अब पढ़ने से, सुनने से, देखने से, व्यवहार से वृत्ति बनती है। अब आगे हम देखें कि स्थान, स्वयं, स्थान, सेवा, प्रकृति, उसमें ये वृत्ति कैसे वायुमंडल बनाने का काम करती है। अब इसमें दोनों बातें हैं। कई बार हम देखते हैं कि जिस स्थान पर जाते हैं वहां का वायुमंडल जैसा होता है वैसी हमारी वृत्ति बन जाती है। और बाबा कहते हैं कि आपकी वृत्ति से उस स्थान का आपको वायुमंडल बनाना है। मिसाल के तौर पर स्मशान में जाएं तो क्या सोच होता है, क्या वृत्ति में होता है, क्योंकि वहां शोक, दर्द, दुख, रोना, यही वहां एक्टिविटी है, वही एटमोस्फियर। जो भी आते हैं वहां वैराग की भावना जागती है। स्मशान में जाकर के देखते हैं बॉडी को जलते हुए तो खुद के मन में भी आता है कि देखो एक दिन मेरा ये शरीर भी इसी प्रकार से जलने वाला है, वैराग आता है ना। उस स्थान वृत्ति को बदल रहा है, स्थान का प्रभाव पड़ रहा है। इसी जगह पर हम कोई हिल स्टेशन पर बहुत अच्छी नेचर, प्रकृति, ग्रीनरी, पहाड़ी, झरने, नदियां आदि है, ऐसे स्थान पर जाते हैं तो हमारी विचारधारा और हमारी वृत्ति चेंज हो जाती है। ऐसे समुद्र के किनारे पर जाओ तो वहां विचार और वृत्ति वो स्थान से क्या होती है, बदल जाती है। एक बारी बॉम्बे में हमने बोरीवली के सब जोन के करीब 2000 भाई बहनों का इंटरनेशनल योग समुद्र के किनारे पर रखा तो वो वहां बहुत सहज ज्ञान सागर, प्रेम के सागर की क्या होती थी, याद आती थी। उस सागर को शीतल लहरें आती थी, बाबा की ज्ञान की उछल है वो याद आती थी। तो स्थान क्या करता है, वृत्ति को बदल देता है। और उस अपोजिट है कि बाबा ने कहा हमारी वृत्ति इतनी प्योर इतनी शुद्ध हो कि जिससे उस स्थान का वातावरण क्या हो जाए, बदल जाए। समझो हम मेडिटेशन में बैठे हैं कमरे में, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन है, एकाग्रता, मन शांत है, मन स्थिर है, तो हमारे विचारों से भी वातावरण बनता है, हमारी मन की स्थिति से ऑरा तैयार होता है। अब जिस स्थान पर बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं तो पूरे कमरे का वातावरण शांत शीतल स्थिर। अब उस वातावरण के अंदर भी कोई प्रवेश करे तो ऑटोमेटिकली बिना पुरुषार्थ के भी उनका मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। कहते हैं कि बाबा जब योग में बैठते हैं तो उस कमरे में जाओ तो लाइट 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 फील होती है, वो शांति महसूस होती है, वो एनर्जी वो शक्ति उसे अनुभव में आती है। तो हम अपनी वृत्ति द्वारा स्थान का वातावरण भी चेंज कर सकते हैं। अभी वर्तमान में ही बोरीवली वेस्ट में जो सेवा केंद्र है वो बिल्कुल स्मशान से जुड़ा हुआ है, और वहां के एमपी ने जो स्थान बनाया है वो जो डेथ के बाद प्रार्थना सभा रखते हैं ना, श्रद्धांजलि, उसी के लिए वो हॉल बनाया था, और वो हॉल हमको सेवा के लिए मिला हुआ है। लेकिन आजू बाजू में इतना सुंदर गार्डन, वो हॉल का पूरा लुक है वो चेंज कर दिया है। तो आप वहां पर जाओ तो आपको स्मशान की फीलिंग आएगी ही नहीं, दूसरे गेट से जाओ तो आपको अलग फीलिंग आएगी, यहाँ आओ तो अलग, क्योंकि रोज बैठ करके भाई बहने वहां योग करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, कितने न प्रोग्राम उस हॉल के अंदर होते हैं। एमपी को भी लग रहा है कि आप लोगों ने तो पूरा हॉल का लुक और वातावरण ही बना दिया है, और उनको होता है कि कोई ऐसा स्थान हो तो ब्रह्मा कुमारी को दो तो वो वहां का वायुमंडल क्या करेगी, चेंज कर देगी। तो आधार किस बात पर है, हमारे विचार, हमारी वहां चलती हुई एक्टिविटी, हमारी मन की स्थिति, वो वातावरण को वायुमंडल को चेंज कर देती है। अब ये तो हुई स्थान की बात, लेकिन स्वयं के प्रति भी हमारी वृत्ति कैसी है वो हमें चेक करना है। कई बार हम खुद अपने लिए ही हीन भावना होती है, मेरे में कोई कला नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे से कुछ हो सके ऐसा है ही नहीं, मैं तो ऐसी कमजोर हूं तन से भी, मेरा रूप भी अच्छा नहीं, मेरी वाणी ठीक नहीं, मेरे संस्कार ठीक नहीं है, और मेरा तो ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। तो खुद के प्रति हीन भावना, खुद के लिए वृत्ति कैसी है, हीन वृत्ति है। इसीलिए बाबा ने आकर के हम बच्चों को क्या किया है, स्वमान दिया है, हे माता तुम जगत की माता हो, तुम शिव की शक्ति हो, तुम विश्व की गुरु हो, तुम विश्व की कल्याणकारी हो, विश्व का उद्धार करने वाली तुम हो। बाबा ने कहा, माताएं वंदे मातरम। इस स्वमान दिए बाबा ने कि अपने प्रति जो हीन भावना हो, अरे हे माता, तू तो शेर पर सवारी करने वाली है। स्वमान बाबा ने क्या किया, हमारा ऊंचा उठाया, तो हमारे प्रति हमारी वृत्ति चेंज हुई। श्रेष्ठ वृत्ति हमारी अपने लिए बनने लगी और वो संकल्प और वो वृत्ति से हमारे में उमंग, उत्साह, शक्ति महसूस करने लगे कि हाँ, मेरे में वो ताकत है। कौन कह रहा है? बाबा ने कहा, स्वमान दिया कि आपने तो ये पार्ट, ये रोल आपने तो प्ले किया हुआ है संगम युग पर। कितने भक्तों की मनोकामनाओं को हे माताएं आपने पूर्ण की है। अब ये शब्द हमारी हीन भावना को समाप्त कर देते हैं और हमारे में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति ये पैदा कर देते हैं। तो हमारी अपने प्रति वृत्ति भी बाबा ने क्या की, बदल दी। आप तो क्या थे, क्या से क्या बने हो। तो स्वयं के प्रति भी हमारी भावना वृत्ति ऊंची हो, हमारे लिए हमारा सोच वो श्रेष्ठ रहे। अब है कि प्रकृति के प्रति हमारी वृत्ति कैसी है। बाबा ने कहा है कि बच्चे, योग बल द्वारा आपकी स्वयं की प्योरिटी, पवित्रता, आपकी पवित्र दृष्टि ये प्रकृति को भी पावन बनाएगी। ये प्रकृति भविष्य में सुखकारी बन जाएगी। प्रकृति के प्रति हमारा अप्रोच कैसा, वृत्ति कैसे। एनवायरमेंट डे था, बोरीवली में प्रोग्राम रखा था, उसमें कैक्टर भाई आए और जब उनको बोलना था तो उन्होंने कहा कि मुझे भी पौधों से बहुत प्यार है और मेरी टेरेस पर मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे लगाए हैं। कहते मैं रोज उनको प्यार से देखता हूँ, प्यार से उनको पानी देता हूँ, खाद देता हूँ और कुछ समय बहुत प्यार से उनको मैं देखता रहता हूँ और उनको देख करके मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो कहो वो पौधा इतना अच्छा विकसित हो रहा है। और फिर कहते हैं कि मेरा फिल्म लाइन का काम है तो कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर गांव जाना पड़ता है, तो दूसरे जो नौकर है वो तो दे ही रहे हैं पानी और खाद, लेकिन कहते हैं जब मैं आके देखूं तो वो मुरझाया हुआ पौधा होता है। अर्थात हमारी भावनाएं वो प्रकृति के पर भी इफेक्ट करती है। और आप देखेंगे बहुत सारे पौधे लगाते हैं लेकिन हमने अपने हाथों से जो बीज डाला, जो पौधा हमने लगाया है, उनके प्रति बाकी पौधों से अलग भावना होती है ना। मैंने अपने हाथों से, हम देखते हैं दादी आती है, हम उनके द्वारा भी वृक्षारोपण कराते हैं। अच्छा ये तो गुलजार दादी ने बोया हुआ बीज है, ये प्रकाशमणि दादी ने दिया हुआ बीज है। भावना, वृत्ति, उनके प्रति दृष्टि डिफरेंट हो जाती है। तो प्रकृति भी हमारी भावनाओं को महसूस करती है उन पर भी उसका असर होता है। और इसीलिए विज्ञान भी ये कहता है कि दो व्यक्ति ने पौधे लगाए हैं लेकिन हमारी नेचर का असर उन पर होता है। हम कितने प्यार से, कितने अच्छी भावना से देख करके उसका सिंचन करते हैं। नेचर हमारा शांत है, शीतल है, शुभ भावना वाला है, परोपकारी है। वो व्यक्ति जो सिंचन करता है, दूसरा है वो गुस्से वाला है, है ना, ईर्ष्या है, नफरत की भावना भरी है, वो भी सिंचन करता है, लेकिन दोनों के ग्रोथ में अंतर होता है क्योंकि दोनों की वृत्ति अलग है। एक है पौधा है, पानी देना चाहिए दे दो, खाद देनी चाहिए दे दो। आप खुद भी महसूस करते होंगे कि आप किसी के घर जाएं या आपके घर कोई आए, चलो अभी ये आ ही गए हैं, उनके लिए हमको ये बनाना पड़ेगा, ये खिलाना पड़ेगा, और आप खिला रहे हो लेकिन अंदर से वो भाव नहीं है, तो खाने वाले पर असर और इम्पैक्ट अलग। हम कहाँ गए हैं और बहुत अच्छी चीज बना के खिला रहे हैं लेकिन उनका भाव ठीक नजर न आए तो कहते बनाया तो सही उन्होंने, खिलाया भी, लेकिन उनके चेहरे को देख के, उनकी एक्टिविटी को देख करके ऐसे लगता था कि हम जैसे वहाँ बोझ बन गए हो और कहाँ से आ गए हैं। उनका व्यवहार ठीक नहीं था। तो कितनी भी अच्छी चीज हो लेकिन वो वाइब्रेशन, उनकी जो वृत्ति में जो चीज है वो महसूस होती है या नहीं होती है? हमें होती है। एक और उदाहरण कि हस्बैंड वाइफ रोज सुबह में नाश्ता करने के लिए बैठने का टाइम और सामने के फ्लैट में एक लेडी का रोज वही समय होता था कि वो कपड़े सुखाती थी। और यशवंत भाई बैठे होते थे, वो लेडी, वो माता कहती थी कि देखो ना इसके कपड़े कितने मैले होते हैं, रोज कोई ना कोई कमेंट, ये ठीक नहीं सुखाती है, ये ठीक झटक करके नहीं रखती है, इनको पता नहीं है कि क्या कैसे कपड़े सुखाने चाहिए, रोज कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, गंदे हैं, मैले हैं। एक दिन उस नाश्ते के लिए बैठे, उसके पहले उनके हस्बैंड ने उनकी खिड़की का ग्लास था ना, वो साफ कर दिया। और उसको पता नहीं था, दूसरे दिन आकर के बैठे तो कहने लगी, कितने दिनों से मैं देखती हूँ आज उनके कपड़े साफ लग रहे हैं। तो उनके हस्बैंड ने कहा, ऐसा नहीं है, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति में फर्क है। आज तेरे को ये कपड़े साफ दिख रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी खिड़की का ग्लास साफ किया हुआ है। तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति बदले, तो बाबा कहते हैं वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन। हमारी वृत्ति दूसरों की वृत्ति को भी चेंज कर सकती है। आप कई बार ऐसे महसूस अपने जीवन में करते होंगे कि किसी के प्रति हमारे मन में नफरत है, घृणा है, नीचे गिराने की भावना है, उन पसंद नहीं है किसी न किसी बात से, तो हमारी विचार और हमारी वृत्ति उनके प्रति कैसी चलती है? और वो वाइब्रेशन उस आत्मा को भी जाकर के स्पर्श करते रहते हैं और वो चिंतन बार 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 उसके प्रति, न जाने बाबा ने कहा भी है कि जिनके प्रति नफरत हो ना वो दिन में बहुत बार याद आता है वो व्यक्ति, तो बार बार हमारी वो भावनाएं उस आत्मा के प्रति पहुंचती है और फिर उनको भी हमारे प्रति वही भाव जागृत होते हैं। ऐसा अनुभव किया है कि नहीं? और जिनके प्रति आपके मन में प्यार है, सद्भावना है, तब उन बार बार जब भी उनकी याद आए तो आपको उनके प्रति प्रेम जागृत होता है, उनके लिए अच्छे विचार आपके मन में, अच्छे विचारों का प्रवाह है, वो बहता है, वो भी उनको स्पर्श होता है और इसीलिए उनके मन में भी हमारे प्रति वो भावना, श्रेष्ठ शुद्ध भावना, पवित्र भावना हमारे प्रति भी जागृत होती है। कई बार मन ही मन हम किसी को बहुत याद कर रहे होते हैं और होता है कि उनको मिलना है, अभी उनको फोन करना है, किसी को कुछ बोलते नहीं हो लेकिन आपके मन में वो चल रहा है और आप सोच रहे हो और वहां उनकी फोन की घंटी बजती है, आप कहते हो कि अरे मैं आपको ही याद कर रही थी, आपको ही फोन करना चाहती थी, आपका फोन आ गया। या तो कई बार वो खुद ही आ जाते हैं, कितने अच्छा याद कर रही थी, मिलना चाहती थी और आप देखो पहुंच ही गए। अर्थात हमारी दृष्टि, हमारी विचार, हमारी भावनाएं आदान प्रदान है ना, एक दूसरे को करती है। ऐसे ही हम सेवा करते हैं, चाहे परिवार के सदस्य को घर संभालते हो ना, पत्नी बच्चे बहू बेटा लड़की जवाई आदि, अभी बाबा कहते हैं उसको एक बोझ समझ करके कर तो रहे हो, घर संभाल रहे हो, खाना बना रहे हो, खिला रहे हो, उनके लिए सब प्रबंध कर रहे हो, लेकिन अंदर में एक बोझ समझ के करें तो वो वृत्ति अलग है और उसी वृत्ति को बाबा चेंज करता है कि बाबा ने इन आत्माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे निभाना है, इन आत्माओं की सेवा मुझे दी है, मुझे हर तरह से प्यार से इन आत्मा की पालना करनी है। तो अप्रोच क्या हो जाएगा, कार्य वही कर रहे हो लेकिन भावना चेंज हो जाती है, वृत्ति बदल जाती है। दूसरा है सेंटर पर सेवा करते हो, उस सेवा भाव में भी कितना निस्वार्थ भाव से हम सेवा करते हैं, निस्वार्थ वृत्ति से सेवा, उसका रिजल्ट अलग। निस्वार्थ भाव से कार्य किया उसकी इफेक्ट इम्पैक्ट अलग होती है, वो ऐसी छू जाती है जिसकी सेवा करो, उनको होता है कि इनके लिए मैं क्या करूं और क्या न करूं, इन्होंने इतनी निस्वार्थ सेवा की, अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार हो जाते, अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो खुद अपना भी नहीं सोचते हैं और सब कुछ आपके लिए, निस्वार्थ भाव। कई बार सेवा करके हमें कोई स्थूल अपेक्षा शायद हम न भी रखें कि उनसे कुछ ये मिले या वो मिले, लेकिन सूक्ष्म में भी यदि हमारी भावना ये रहती है कि मैंने सेवा की कुछ नहीं, कम से कम थोड़ी वो प्रशंसा तो करते, थोड़ा रिस्पेक्ट तो वो देते, ने? मान तो देते, मेरा नाम तो कम से कम लेते कि इन्होंने ये किया, मैंने किया, लेकिन दूसरों का नाम दिया, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। तो ये नाम मान शान की अपेक्षा ये भी हमारी वृत्ति निस्वार्थ नहीं हुई। जो कुछ किया वो हमने कुछ पाने के लिए किया, पाना था इसलिए किया, कुछ भी नहीं चाहिए और मैं करूं, ये निस्वार्थ भावना नहीं। बाबा ने मुरली में कई बार हम टीचर्स बहनों को भी कहा है कि कोई भी वीआईपी, कोई भी व्यक्ति आती है, उनकी सेवा करते हो, उसमें आपके मन में सूक्ष्म में भी कोई भाव न हो। कई बार हम सोचते हैं अच्छा ये व्यक्ति, इसका ये बिजनेस है, ये इस प्रकार की पोस्ट पर है, इस प्रकार की सत्ता उनके पास है, तो उनकी सेवा करो क्योंकि वो हमें क्या हो जाए, उपयोगी हो जाए। वह छोड़ करके वो आत्मा है, मैं आत्मा, वो भी आत्मा, और परमात्मा की बहुत सुंदर ये सारी रचना है। मेरे ही पिता की रचना है, ये मेरे है और उनके लिए मुझे करना है, कुछ लेने की भावना नहीं। तो दातापन की वृत्ति चाहिए, लेने की नहीं लेकिन देने की वृत्ति। तो निस्वार्थ वृत्ति से हमें क्या करनी है, सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से। अब ऐसी वृत्ति हमारी कैसे बने? विचार से वृत्ति बनती है, वाणी से वृत्ति बनती है और व्यवहार से वृत्ति बनती है। एक व्यक्ति जो बात करता है तो उनकी वाणी से आप उनकी मनस्थिति को परख पाते हो, समझ पाते हो कि उनके शब्दों में क्या चीज छिपी हुई है। कई बार हम कहते हैं कि ये व्यक्ति आया था, मिलता था, बहुत मीठी 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 बातें की, लेकिन उसकी वृत्ति ठीक नहीं थी, उसकी दृष्टि ठीक नहीं थी। वाइब्रेशन आते हैं कि नहीं? वाणी से भी व्यक्ति की वृत्ति को परखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसलिए तो बाबा कहते वाणी मधुर हो, सरल हो, युक्ति युक्त हो, शीतल हो, कम धीरे से बोलो। बोलना तो है लेकिन धीरे से बोलो, प्यार से बोलो, सरलता हो, उसमें कोई छल कपट न, कोई गलत भावना न हो। क्या ऐसी वाणी है? तो ऐसी वाणी सामने वाली आत्मा की वृत्ति को भी चेंज कर देती है, बदल देती है। इसलिए आप देखिए हम सब एक तीन बार इस वायुमंडल को चेंज करने के लिए अपनी शुरुआत भी होती है ओम शांति से। एक लंबे स्वर से तीन बार हम सब जितने भी बैठे हैं सब मिल करके एक लंबे स्वर से बाबा की याद में ओम शांति बोले। रेडी सब? हाँ चलें। दिखना उनसे वायुमंडल वाणी से कैसे बदल जाता है। चलें हमारी वाणी से हमारी वृत्ति पर भी इफेक्ट होता है और वायुमंडल भी बदलता है। हम मेडिटेशन में जो सॉन्ग सुनते हैं वो वाणी ही है ना, लेकिन आप सब महसूस करते हैं कि हाँ वो गीत जब बजता है आवाज ही है, वाणी ही है, लेकिन उस गीत से मेरा इतना अच्छा योग लग जाता है। होता है ऐसा, हर एक का प्रिय कोई न कोई वाणी है, कोई न कोई सॉन्ग है कि जब भी लगा दे वो सॉन्ग मेरा ध्यान बाबा के प्रति चला जाता है। तो वाणी भी विचार, मानसिक स्थिति और वृत्ति को क्या कर देती है, बदल देती है। आप देखो भक्ति में भी अब नवरात्रि चल रही है, रोज वो दिन होते हैं, लेकिन ये 9 दिन नवरात्रि के शहरों में देखेंगे चारों तरफ भक्ति भाव आरती न महिमा गरबा, तो पूरा एटमोस्फियर शहर क्या क्या हो जाता है, चेंज है। तो आवाज आज कमेंट्री से जो हम योग करते हैं, हमारा सबका लक्ष्य तो ये है आवाज से परे जाने का, लेकिन उसी के लिए हम वाणी का उपयोग करते हैं। वो कमेंट्री में वाणी कैसी होती है जो हमको यहां से उड़ा के ऊपर की ओर ले जाती है। वाणी तो है, लेकिन वृत्ति में ये है कि इन शब्दों से सभी आत्माओं को परमात्मा के पास ले जाना है, प्रभु मिलन कराना है और बाबा से इनको प्राप्ति करानी है। वृत्ति में वो चीज है ना, तो वायुमंडल कैसा हो जाता है, चेंज। वाणी से वायुमंडल बदल जाता है। देखो हम बिजनेस करते हैं, अभी उसमें भी बिजनेस करने के पीछे भी हमारी वृत्ति क्या है वो इम्पोर्टेंट है ना? कई बार बिजनेस करते हैं लेकिन छल कपट झूठ आगे पीछे करके धन को कमा लेते हैं, लेकिन वृत्ति में क्या है, प्योरिटी नहीं है, शुभ भावना नहीं है, स्वच्छता नहीं है, श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं अपने जीवन का। मैं जब छोटी थी तो मेरे से भी हर एक बच्चे से पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हो ना, के आगे क्या करना है, तो मैं कहती थी कि मुझे है ना टीचर बनना है। तो कोई पूछते थे क्यों डॉक्टर नहीं बनना है, इंजीनियर नहीं बनना है, लॉयर नहीं बनना है, मैंने कहा ना। फिर वो पूछते थे क्यों नहीं बनना है डॉक्टर, तो बचपन में ही मेरे मन में ये बात थी कि मैं डॉक्टर बनूं, डिस्पेंसरी खोलूं, तो मेरे मन में मेरी डिस्पेंसरी अच्छी चले, मेरी इनकम हो, उसके लिए मेरे मन में ये विचार चलेगा कि लोग ज्यादा बीमार पड़े और मेरी डिस्पेंसरी चले ना? मैं कहा इसलिए मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहती हूँ कि डिस्पेंसरी खोल करके मुझे अच्छा विचार नहीं आएगा। एडवोकेट होते हैं, उनको भी होता है कि गुना बढ़े तो केस मेरे पास आए, और केस आए तो आजकल आप देखते हो इतना लंबा चलाते हैं, जल्दी उनका फैसला नहीं करते क्योंकि उनकी इनकम चालू रहे। तो भावना वृत्ति, जबकि था कि टीचर बनूंगी तो मैं विद्या दान करूंगी, मन में रहेगा कि पढ़ा करके किसी की जीवन को मैं बना सकूंगी, इनको आगे बढ़ा सकूंगी। तो आंतरिक वृत्ति अपनी क्या है, व्यवसाय करें लेकिन वृत्ति नहीं। आज कोई दर्द है, दुख है, वो आएगा, मुझे मिटाना है, उनको स्वस्थ बनाना है, भावना में डिफरेंस है ना। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं उसमें वृत्ति में शुद्धि होनी चाहिए ना? तो आत्मा को क्या होती है, वो शुद्धि पहुंचती है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल कहानी है कि एक बहुत धनवान फैमिली थी, वो धनवान फैमिली के घर में बच्चे ने जन्म लिया, तो शुरू से ही सुख सुविधाएं, साधन संपत्ति कोई भी चीज की कमी नहीं थी। तो चलते चलते उस फादर को हुआ कि बच्चे को अपने पास सब कुछ है, ऐसे पाल रखे हैं, इनको भी एहसास होना चाहिए कि दुनिया में लोग कैसे जीते हैं, कैसी मेहनत करते हैं। तो उसने क्या किया कि कुछ दिन तक बच्चे को लेकर के रोज एक किसान के पास जाते थे खेत में, कि वहां देखे कि किसान गर्मी में, ठंडी में, बारिश में एक कितनी मेहनत कर रखे हैं, और खाना भी कहाँ खा रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे, इनके घर में तो बढ़िया डाइनिंग टेबल पर बैठ करके, और वैरायटी खाना। अब किसान बेचारा रोटी सब्जी लेकर के वहां, और एक वृक्ष के नीचे सारी फैमिली मेहनत कर रही है, आपस में मिलके वहां पर खा रखे हैं, वहां ही बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो कुछ दिन लेके गया फादर, फिर उसको हुआ कि अब मैं बच्चे को पूछूं कि अभी उनको एहसास हुआ है इस चीज का कि मुझे क्या मिला है। जब उस बच्चे से पूछा तो आपको भी वंडर लगेगा, उस बच्चे ने जवाब दिया कि पिताजी आपने बहुत अच्छा किया, आप मुझे यहाँ हरे भरे खेतों में ले आए और मैंने देखा कि इनकी जीवन कितनी सुखी है, है? हम तो एसी में कमरे में पैक मंद में रहते हैं, घर में ही घर में खेलना देखना, ऐसा जमीन और आसमान खुला, शीतल छाया, हरियाली, ये तो हमारे पास है ही नहीं। और ये लोग कितना आपस में वृक्ष की नेचुरल शीतलता के नीचे बैठ करके खा रहे हैं, कितनी यूनिटी आपस में इनका, कितना प्यार है। तो फादर को आश्चर्य लगा। इस कहानी के पीछे ये है, फादर किस वृत्ति से ले गए थे और बच्चे की वृत्ति क्या थी। जैसी हमारी वृत्ति वैसी ही दृष्टि, और वैसी ही हमारी क्या होगी, सृष्टि है वह होगी। इसलिए हमें अपनी वृत्ति को, भावनाओं को, भावों को बहुत प्योर, कल्याणकारी और बहुत ही श्रेष्ठ भावनाएं हमें हर एक आत्मा के प्रति रखनी है। बाबा ने भी आकर के हर एक आत्मा के प्रति हमारी वृत्ति और दृष्टि क्या की है, बदल दी है। तो हमें अपनी वृत्ति को ऐसा बनाना है कि हम जहाँ जाएं वहाँ का वातावरण, हमारी उपस्थिति वहाँ के एटमॉस्फेयर को चेंज कर दे। बाबा ने कहा आपकी वृत्ति में इतनी प्योरिटी और शुद्धि हो कि कोई गलत भावनाओं को लेकर के आपके पास आया हुआ हो, लेकिन आपकी प्योर वृत्ति उनकी वृत्ति को भी बदल दे। और आप हम सब ब्राह्मण हैं, बाबा की जीवन कहानी, मम्मा की जीवन कहानी, दादियों के भी अनुभव सुने हुए हैं कि कैसे गलत भावना से बाबा के पास आते थे, बाबा को देखकर वो वाइब्रेशन, वो वायुमंडल, उनकी जो गलत वृत्ति, गलत भावना, वो वहाँ ही खत्म हो जाती थी और बाबा के आगे झुक जाते थे। तो हम भले वो किसी भी भावना से आया है, दादियाँ भी सुनाती थी कि गलत भाव से, कुदृष्टि से, विकारी दृष्टि से आते, लेकिन दादियों को देख करके उनको एक देवी का साक्षात्कार, देवी का एहसास उन आत्मा को होता था, तो वो गलत विचार उनके वहां से समाप्त हो जाते थे, हट जाते थे। तो कितनी वृत्ति प्योर, कितनी वृत्ति की शुद्धि कि उनसे समीप आए, उनको देखे, मिले और ऐसा वायुमंडल और वातावरण जो उनके विचारों को बिल्कुल ही चेंज कर दे। एक लास्ट एग्जांपल सुना के पूरा करूंगी। एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और हर जगह पर कंपटीशन तो होती है, टेंशन होता है, तो काफ़ी समय से उनको नींद नहीं आती थी, काफ़ी मास से कहते रात दिन मैं सोया ही नहीं हूँ। तो उनका सेक्रेटरी लेके आया वहाँ पर और बैठे, फिर सेंटर दिखाया और बाबा के ज्ञान की बातें हैं वो उनको सुनाने लगे। सुनते सुनते उनको वहाँ ही नींद आ गई। तो मैंने उसके सेक्रेटरी को कहा कि आप तो कहते हो इनको नींद नहीं आती, आप खुद ही देखो, ये ज्ञान की लोरी ने क्या किया, रिलैक्स कर दिया है ना, मन को शांत कर दिया, मन को हल्का कर दिया। तो वहां मैं सुना ही रही हूं और वो तो सो गए। तो वातावरण है ना बाबा के घर का, पवित्र वातावरण, पॉजिटिव वाइब्रेशन, उस एटमोस्फियर में उस आत्मा को बहुत अच्छी नींद है, वो आ गई। तो वातावरण बनाना ये हमारे हाथ में है। अभी एक घंटा हम यहाँ बैठेंगे, योग करेंगे और सारे इस हॉल के वाइब्रेशन और वातावरण हम सब पर निर्भर करेंगे। हम सब उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए सभी माताएं एकदम अलर्ट सीधा होके आंखें खोल करके बिल्कुल रिलैक्स, आप जो सहज पोजीशन में जो बैठ सको उस पोजीशन के अंदर बैठ जाओ। आप सबको पता है ना, प्रभु रत्न कॉन्टेस्ट की कंपटीशन थी, जो माताएं एक घंटा भी नहीं बैठ पाती थी, देखो वृत्ति बदल गई और तीन तीन घंटा लगातार बिना हिले योग में बैठी। उससे आगे अभी जो कंपटीशन हुई उसमें 4 घंटा भी बैठे। माताएं कहते पहले हमने सोचा नहीं था कि हम बैठ पाएंगे इतना। वृत्ति विचार कैपेसिटी है हमारे में, हम उसको यूज करें ना, उसको काम में ले आए। अपनी धीरे 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 हमारी क्षमता को हम क्या करें, बढ़ाएं। तो घर के वातावरण को, विचारों को, वायुमंडल को बदलने की शक्ति है हम में, है? हाथ उठाओ भाई जो समझते हैं। हाँ, अभी जिनको उठना हो जाना हो तो वो पहले ही है ना जाएं। अब कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब भी ना करें, हमें आजू बाजू में भी देखना नहीं है, पूरे हॉल के अंदर मैं अकेली हूं और मेरे सामने मेरा बाबा है, मैं और मेरा बाबा, बस एक वो ही नजर आए, वही हमको दिखाई दे। तो ऐसी स्थिति में हम सब मिल करके योग करेंगे।